लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे असाध्य रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक शारीरिक और आध्यात्मिक देखभाल, सहयोग और समर्थन मिल सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग अपने आम दर्शन समारोह के कार्यक्रम में भाग लिया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Stiamo attenti, che credo che ci potrà fare tanto bene.
मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। अभी तक ठंड से थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण मैं अपने धर्म शिक्षा माला को मान्यवर पियर लुइजी जेरोली को पढ़ने का आग्रह करता हूँ। हम सभी ध्यान दें, यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अवगुणों पर अपनी चर्चा खत्म करने के बाद अब हम सद्गुणों की चर्चा करते हैं, जो अवगुणों के विपरीत समानांतर रूप में दर्पण देखने की भांति है। मानव का हृदय सभी बुराइयों में घिरा रह सकता है। यह अपने में उन हानिकारक प्रलोभनों की ओर ध्यान दे सकता है जो विभिन्न रूपों में हमें घेरे रहते हैं, लेकिन यह उन सबों का प्रतिकार भी कर सकता है। चाहे वे कितने भी कठोर क्यों ना हों, मानव अपने में अच्छाई हेतु बनाया गया है, जो उसे सही अर्थ में परिपूर्णता प्रदान करती है, और वह उस कला को अपने में अभ्यास कर सकता है, जो उसमें एक निरंतरता बन जाती है। हमारी इस आश्चर्यजनक संभावना पर चिंतन हमारे लिए नैतिकता के दर्शन शास्त्र गुणों के अध्याय की शुरुआत करता है। रोम के दर्शन शास्त्रियों ने इसे सद्गुणों की संज्ञा दी, तो वहीं यूनानी इसे ओरेत कहते हैं, जबकि लातिनी शब्दावली इसे शक्तिशाली, गुणवान व्यक्ति, साहसी, अनुशासन और तपस्या के योग्य घोषित करता है। अतः सद्गुणों का विकास एक लंबे अभ्यास के माध्यम होता है, जहां हम प्रयास और यहां तक की साधना को पाते हैं। यूनानी शब्द वहीं हमें श्रेष्ठता के भाव को प्रकट करता है, जो प्रशंसा के काबिल है।
La persona virtuosa è pertanto quella che non si snatura deformandosi, ma è fedele alla propria vocazione.
सद्गुणी व्यक्ति इस भांति अपने में पदभ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वह अपने जीवन में अपने कार्यों को निष्ठा से करते जाता है। वह अपने जीवन के मर्म को समझता है। हम अपने में यह विचार करते हुए गलत होंगे कि संतगण अपने में मानवता के अपवाद हैं। यह हमारे लिए एक गलत धारणा होगी कि वे अपने में एक विजेता हैं, जिन्होंने हमसे परे जीवन यापन किया। संतगण अपने में वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर ली, जिन्होंने अपने जीवन की बुलाहट को पूर्ण रूपेण जिया। यह दुनिया अपने में कितने खुशहाल हो सकती है यदि हम न्याय, सम्मान, एक दूसरे के लिए भलाई का जीवन, विस्तृत मानसिकता और आशा को अपने में एक दूसरे के साथ साझा करते, जो हमारे लिए दुर्लभ विसंगति ना होती हो। यही कारण है वर्तमान समय के विकट परिस्थिति में हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम सभी गुणों के अध्याय की पुनः खोज करें और उसे अपने जीवन में जीने का अभ्यास करें। इस विकृत होती दुनिया में हम इस बात को याद करें कि हम किस रूप में बनाए गए हैं। हम सदैव ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, लेकिन हम सद्गुणों को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इसे एक ठोस और पुख्ता रूप में परिभाषित करते हुए कहती है,
La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene.
सद्गुण आदतन एक दृढ़ रूप में एक अच्छा कार्य करना है। अतः यह कोई यदा कदा या काम चलाओ कोई कार्य नहीं है जो आसमान से टपकती हो। इतिहास हमें बतलाता है कि यहाँ तक कि अपराधियों ने भी अपने जीवन के शांतिमय क्षणों में अच्छे कार्यों को किया। वे कार्य ईश्वर की पुस्तिका में दर्ज किए गए हैं, लेकिन गुण की बात कुछ और है। यह एक अच्छाई है जो एक व्यक्ति में धीरे धीरे उसकी प्रौढ़ता से पनपती है और उसके व्यक्तित्व का अंग बनते जाती है। सद्गुण स्वतंत्रता में हमारी एक आदत है। यदि हम अपने सभी कार्यों में स्वतंत्र हैं और यदि हम हर समय अच्छाई और बुराई में चुनाव करते हैं, तो सद्गुण हमें सदैव अच्छी और सही चीजों के चुनाव की ओर अग्रसर करती है। यदि सद्गुण हमारे लिए एक अति सुंदर उपहार है, तो हमारे लिए तुरंत एक सवाल उभर कर आता है, इसे हासिल करना कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब अपने में सहज नहीं है, यह अपने में जटिल है। ख्रिस्तीय के लिए यहाँ हम पहली सहायता को ईश्वर की ओर से आता पाते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा हम बपतिस्मा प्राप्त लोगों में क्रियाशील रहते हैं। वे हमारे हृदय में कार्य करते और हमें सद्गुण जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। कितने ही ख्रिस्तीय हैं जिन्होंने आंसू बहाते हुए पवित्रता को हासिल किया है। उन्होंने अपने में इस बात का अनुभव किया है कि कितनी ही कमजोरियां हैं जिन पर वे अपने में विजयी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि ईश्वर ने उनमें उस नेक कार्य को पूरा किया है।
Sempre la grazia precede il nostro impegno morale.
कृपा हमारे लिए सदैव हमारी नैतिक प्रतिबद्धता से पहले आती है। इससे भी बढ़कर हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि हमें प्राचीन समृद्धि अपनी प्रज्ञा में कहती है, सद्गुण का विकास होता है और उसे हासिल किया जा सकता है। और ऐसा होने के लिए हमें सर्वप्रथम पवित्र आत्मा से विशेष रूप में विवेक की याचना करने की आवश्यकता है। मनुष्य सुखों, भावनाओं, प्रवृत्तियों, जुनूनों पर विजयी पाने के लिए अपने में स्वतंत्र नहीं है, जब तक कि वह इनमें रहने वाली ताकतों, कभी कभी तानाशाह के खिलाफ कुछ करने में सक्षम ना हो। हमारे पास एक अति मूल्यवान निधि है जिसे हम खुले दिल दिमाग के रूप में धारण करते हैं। यहाँ हम अपने लिए विवेक को पाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी गलतियों से सीखते और अपने जीवन को एक सही दिशा देते हैं। और इसके बाद हमारी रुचि आती है, जहाँ हम अपने लिए अच्छा करने का चुनाव करते हैं, जिसके तहत हम कठोरता का अभ्यास करते और अति का परित्याग करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस भांति हम शांतिमय दुनिया में जो हमें चुनौती प्रदान करती सद्गुणों की यात्रा शुरू करते हैं, जो निश्चित रूप में हमारे लिए खुशी का कारण बनती है। इस तरह अपने आम दर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सबों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos.
Domino Bobisco, sin nome Domini benedictum,
ex hoc in seculum,
et in nostro in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार 13 मार्च को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अपने आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने सद्गुणों और बुराइयों पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखी। संत पापा ने सद्गुणों पर चर्चा करते हुए विश्वासियों को प्रभु की कृपा से इसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के मद्देनजर संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कितने ख्रिस्तीय आंसुओं के माध्यम से पवित्रता तक पहुंचे हैं। उन्हें पता चला कि वे अपनी कुछ कमजोरियों पर काबू नहीं पा सके हैं। उन्होंने पाया कि ईश्वर ने उनका अच्छा काम पूरा कर दिया जो उनके लिए केवल एक कच्चा मसौदा था। हैशटैग आम दर्शन समारोह। और आम दर्शन समारोह के समापन पर संत पापा फ्रांसिस ने एक बार फिर उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो संघर्ष के भयानक परिणाम भुगत रहे हैं। युद्ध के पागलपन को जीतने के लिए बहुत सारे युवा मर रहे हैं। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 13 मार्च को वाटिकन में परमाध्यक्ष के रूप में अपने चुनाव की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने आम दर्शन समारोह के समापन पर इस वास्तविकता की निंदा की। इतालवी भाषी तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन के दौरान संत पापा ने एक बार फिर संघर्षों से घायल आबादी के लिए प्रार्थना करने के अपने आग्रहपूर्ण निमंत्रण को दोहराया। संत पापा ने सभी विश्वासियों को इस चालीसा काल में ख्रिस्तीय एकजुटता के कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही जोर देकर कहा, आइए हम उन लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें जो युद्ध के भयानक परिणाम भुगतते हैं। पिछले 12 महीनों में 13 मार्च 2023 से लेकर आज तक संत पापा ने मध्य पूर्व में 60 से अधिक देशों और पीड़ित यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए 150 से अधिक बार अपीलें की हैं। जैसे ही उन्होंने प्रांगण में विश्वासियों को संबोधित किया, संत पापा ने खुलासा किया कि उन्हें आज युवा सैनिक का एक रोजरी माला और एक सुसमाचार पुस्तिका मिली जो अग्रिम पंक्ति पर मारा गया। यह याद करते हुए कि कैसे इस दिवंगत सैनिक ने इस माला को पकड़े प्रार्थना की थी, संत पापा ने अफसोस जताया कि बहुत सारे युवा लोग मरने के लिए जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संत पापा ने प्रार्थना की अपील करते हुए कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें युद्ध के इस पागलपन से उबरने की कृपा प्रदान करें। युद्ध हमेशा एक हार है। और संत पापा फ्रांसिस ने पनामा में एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वालों को एक संदेश भेजा और कलीसियाई संस्थानों से उन स्थितियों को खत्म करने का आह्वान किया जो दुर्व्यवहार करने वालों की रक्षा करते हैं, जो अपने अधिकारों के पदों के पीछे छिपते हैं। कलीसिया सहित किसी भी समाज में रिश्तों को मानवीय बनाने का मतलब परिपक्व सुसंगत व्यक्तियों को बनाने के लिए अथक प्रयास करना है, जो अपने विश्वास और नैतिक सिद्धांतों में दृढ़ हैं, बुराई का सामना करने में सक्षम हैं और सच्चाई की गवाही देते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को 12 से 14 मार्च तक पनामा में होने वाले तीसरी लैटिन अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिभागियों को भेजे एक संदेश में इस विचार की पेशकश की। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए केंद्र CEPROME द्वारा प्रचारित इस कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र से कलीसिया के प्रतिनिधियों को असुरक्षा और दुर्व्यवहार रोकथाम के व्यापक दृष्टिकोण की ओर विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित किया है। अपने संदेश में संत पापा ने समाज के सभी क्षेत्रों में दुर्व्यवहार के संकट को मिटाने के लिए कलीसिया के प्रयासों को प्रभु को सौंपा। उन्होंने 25 सितंबर 2023 को वाटिकन में CEPROME के सदस्यों के साथ हुई अपनी मुलाकात को याद किया। उस समय उन्होंने प्रत्येक पीड़ित में येसु के पीड़ित चेहरे को खोजने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। संत पापा फ्रांसिस ने प्रतिभागियों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए काम करते हुए दुर्व्यवहार करने वालों सहित सभी पापियों के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर ईश्वर की नज़र से विचार करने से हमें अपनी खुद की भेद्यता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। रोकथाम के संदर्भ में उन्होंने कहा, हमारे प्रयासों का लक्ष्य निसंदेह उन स्थितियों को खत्म करना होना चाहिए जो उन लोगों की रक्षा करते हैं जो अपनी स्थिति के पीछे छिपकर खुद को विकृत तरीके से दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि वे स्वास्थ्य तरीके से दूसरों से जुड़ने में असमर्थ क्यों हैं। संत पापा ने कहा कि कोई भी समाज जो नैतिक अखंडता पर आधारित नहीं है एक बीमार समाज होगा, उसके रिश्ते स्वार्थ भय और धोखे से विकृत हो जाएंगे। संत पापा ने अपने संदेश का समापन करते हुए प्रतिभागियों को अपनी कमजोरी को उस शक्ति को सौंपने के लिए आमंत्रित किया जो प्रभु हमें देते हैं। उधर गाजा के लिए सहायता सामग्री ले जाने वाला एक जहाज आपूर्ति पहुंचाने के लिए समुद्री मार्ग खोलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आखिरकार मंगलवार सुबह साइप्रस से रवाना हुआ। जहाज लगभग 150 टन मानवीय सहायता सामग्री ले जा रही है, जिसमें ज्यादातर भोजन, चावल और डिब्बा बंद सामान शामिल हैं। वर्तमान स्थिति यह स्पष्ट नहीं है कि जहाज अपना माल कहां उतारेगा या इसे कैसे आवंटित किया जाएगा। जहाज द्वारा खींची जा रही एक छोटी अस्थायी संरचना का उपयोग लैंडिंग जेट्टी के रूप में किया जा रहा है। गाजा में कोई कामकाजी बंदरगाह नहीं है और इसकी तटरेखा का पानी अधिकांश जहाजों के लिए बहुत उथला है। यदि यह पहली खेप सफल रही तो और आपूर्तियां की जाएंगी। उधर हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने अपने इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की है। उन्होंने सोमवार शाम को प्यूर्टो रिको से एक आधिकारिक वीडियो संबोधन में अपने इस्तीफे की घोषणा की, जब एक संक्रमणकालीन राष्ट्रपति परिषद और एक अंतरिम प्रधानमंत्री की स्थापना की जाएगी तो वह सत्ता से हटने पर सहमत हुए। श्री हेनरी ने कहा, मेरी सरकार परिषद का उद्घाटन के तुरंत बाद चली जाएगी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।